इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं।
ठीक है। अर रहमान और अर रहीम, ये अल्लाह ताला की दो और सिफात आ गई यहाँ पे। और फौरन ये क्यों आई, इसलिए कि अगर इंसान सिर्फ आका का तसव्वुर करता है ना कि एक आका है और मैं गुलाम हूँ, तो दिमाग में क्या ख्याल आता है, दुनिया में आका कैसे होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, बड़े, अब जो ही गुलाम का हमारे दिमाग में तसव्वुर आता है तो एक कोई हबशी आदमी आता है और ऐसे लगता है कोई कोड़ा उसको मार रहा है और वो ऐसे ऐसे आता है ना जहन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, अल्लाह ऐसा आका नहीं है, वो तो अर्रहमान है और अर्रहीम है। ये दोनों लफ्ज किस मादे से निकले, यानी कोई उनका रूट होता है नीचे हर वर्ड का, उसमें से वो वर्ड निकलता है। और इसका रूट है रॉ है और मीम, जिसको हम कहते हैं रहम, रहम का, वैसे रहम जिसको हम उर्दू में भी कहते हैं रहम, रहम वैसे क्या होता है और किस चीज को हम रहम कहते हैं? आपने कभी लफ्ज सुना है रहमे मादर, रहमे मादर सुना, माँ का रहम वो क्या होता है, यूट्रस जिसमें बच्चा होता है, वो बच्चेदानी कह लो या यूट्रस कह लें, तो वो रहम कैसा होता है बच्चे के लिए, उसमें बच्चा परवरिश पाता है, उसमें बच्चे की सारी जरूरियात भी पूरी होती हैं, उसमें बच्चे की हिफाजत भी होती है, चारों तरफ से उसने बच्चे को घेरा होता है और बच्चा उसके अंदर बड़े यानी इत्मीनान से होता है, उसको कोई गजब नहीं पहुंचती वहां। ऐसा ही है ना, माँ अपने ऊपर ले लेगी वो बच्चे से, जो माँ को कोई भी चीज ऐसी तकलीफ कोई आनी हो या कोई ऐसी सामने से नजर आ रही कोई कोई खतरा आ रहा है तो फौरन अपने पेट को पकड़ती है पहले जब उसमें बच्चा होता है। तो यानी रहमे मादर से आपको क्या पता चला कि ऐसी कोई चीज जिसने ढांपा हुआ है चारों तरफ से कवर किया हुआ है मोहब्बत से केयर से नेमतों से, सारी जरूरियात वहां पूरी होती। तो जब अल्लाह ताला के लिए रहमान का लफ्ज आता है तो रहम का अब आपको माना पता चल गया ना, तो वो रहमान जब भी अलिफ नून एंड में आएगा ना उसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का माना आ जाएगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए जब हम बहुत लिखते हैं ना माना तो हम कहते हैं बहुत मेहरबान, ये लिखते हैं बहुत मेहरबान। तो जब हम रहमान कहते हैं तो एक्सट्रीम रहम, मतलब रहमत क्या है, रिफ्फत कल्बी, इसमें एक तो दिल की नरमी और इसमें क्या आता है मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा केयर, रिफ्फत कल्बी मोहब्बत केयर मर्सी जिसको कहेंगे, वो भी इसके अंदर मर्सी है कि अल्लाह सबसे पहले हमें जब रहमान बता दिया, अल्लाह ने अपना तारुफ क्या कराया, अपनी सिफत कौन सी लाया, एक तो पहले रब्बुल आलमीन की और उसके बाद रब्बुल आलमीन में भी बेशक केयर है, ठीक है उसमें भी केयर है और इंसान केयर करता है उसी चीज की जिसकी उसको परवाह होती है, इससे मोहब्बत होती है, इसके कोई एहसास होता है, और फिर रहमान लाके तो और भी बड़ी बात कह दी, इंतहा से ज्यादा रहम करने वाला रहमान में ये आता है, यानी इन क्या चीज, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, इंतहा से ज्यादा केयर, इंतहा से ज्यादा किसी की ये रिफ्फतुल कल्बी मर्सी। सोचें कि वो रब जिसका नाम ही, जिसकी सिफत ही अर्रहमान है, उसकी मोहब्बत की वुसत का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या, क्या अंदाजा कर सकते हैं वो कितना रहमान है? और बाज दफा हम भी कहते हैं इलो इस चीज में क्या रहम है अल्लाह का, फिर मौजी फलां तो इतना बीमार है, मतलब उस उसके ऊपर अल्लाह की क्या रहमत होगी, हमें क्या पता रहमत कहाँ कहाँ छुपी होती है। आपको एक हदीस बस बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने कुछ बंदों के लिए जन्नत में ऊंचे दर्जे रखे होते हैं मगर उनका अमल उनसे कासिर होता है, यानी उन तक अमल पहुंच नहीं पाता, उनका अमल इतना नहीं है इस काबिल के वो वहां तक पहुंचे, तो अल्लाह उनको दुनिया में कोई घाटा दे देता है, कोई तकलीफ दे देता है, कोई बीमारी दे देता है, कोई सदमा दे देता है ताकि वो उस दर्जे को पा लें। तो हम कहते हैं लो इसमें क्या रहम है, हमें क्या समझ, کہ وہ ذات جو کثیر و رحمہ ہے وہ اس نے کیا اس کے اندر رحم رکھا ہوگا ہم نہیں جانتے. تو اب رحمان میں کیا آیا, انٹینسٹی آ گئی, بہت ایکسٹریم آیا کہ بہت بہت زیادہ مبالغہ. اور دوسرا معنی امیجیٹ کا کہ اسی وقت اس کی رحمت ہو رہی ہے, اس وقت یعنی جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تو یہ اس کی رحمت ہے جو ہم اس وقت ہیں اپنے گناہوں کے باوجود, یعنی اس وقت بھی اس کی رحمت کا کی مینیفیسٹیشن اس کا ظہور ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, عملی شکل ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی رحمت ہے ہی تو میں بیٹھی ہوں. تو یہ رحمان کے اندر مانا آ گیا. پھر الرحیم, رحیم اور رحمان اگر الگ الگ آئے نا اکیلے اکیلے تو دونوں کے اندر یعنی دونوں معنی آ جاتے ہیں, یعنی رحمان میں پھر رحیم کا بھی معنی ہوگا. اگر رحیم اکیلا آ جائے تو اس میں بھی پھر رحمان کا بھی معنی آ جائے گا, لیکن اگر دونوں اکٹھے آئیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا نا. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کیا بتایا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں ہے, لیکن رحیم اللہ تعالیٰ ایکسٹراویگنٹ آخرت میں ہے, خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو مومنوں کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, یا یہ کہہ دیں رحمان اللہ دنیا میں اور رحیم اللہ آخرت میں. ٹھیک ہے, اس کی رحمت کی وسعت اگر آپ جاننا چاہیں تو صرف اس بات سے ہی جان لیں کہ فرعون ڈوب رہا تھا اور کہنے لگا میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ وہ فرعون جس سے بڑا ظالم, جابر, متکبر, اللہ کا مقابلہ کرنے والا بھی اور انسانوں کے اوپر بھی انتہا سے زیادہ ظلم کرنے والا تاریخ میں کوئی نہ گزرا نہ کبھی شاید آ سکتا ہے, جو فرعون تھا. اور پیغمبر اس کے پاس پیغام لے کر آئے تبھی بھی اس نے سرکشی نہ چھوڑی, لیکن ڈوبتے وقت جب کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خاک اس کے منہ میں ڈالنی شروع کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے. یعنی ان فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے, اللہ کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق پہ. اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے زید بن حارثہ کا کہ کافروں, ایک کافر نے ان کو پکڑ لیا تھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں, ان کو تکلیف پہنچاؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. تو اس نے ان کو باندھ دیا اور قتل کرنے کے در پہ تھا, تو آگے بڑھا تو انہوں نے کیا فرمایا, یا ارحم الراحمین, تو ایک آواز آئی لا تقتل, اس کو نہ قتل کرو. اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا, پھر دوبارہ تلوار اٹھائی, وہ پھر بولے یا ارحم الراحمین, تو ایک آواز آئی لا تقتل, اس کو قتل نہ کرو. وہ پریشان ہو گیا کون ہے, پھر بھی باز نہ آیا. جب تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کوئی آیا اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا. تو زید بن حارثہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں عرش کے پاس تھا, اللہ تعالی سے میں نے اذن لیا اور میں نے کہا تھا لا تقل. جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں ساتویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا, اسی نے کہا تھا لا تقل. اور جب تم نے تیسری دفعہ کہا تو اللہ کے اذن سے میں تمہارے پاس پہنچ چکا تھا. ارحم الراحمین اتنا بڑا کلمہ ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جتنے کوئی آپ کے ذہن میں آتے نا, فلاں بڑا رحم کرنے والا, فلاں بڑا اس طرح کو لوگوں کا خیال کرتا ہے, فلاں بڑی محبت کرتا ہے کسی سے, جتنی محبتیں آپ کو پتہ ہیں, جتنی کیئر آپ کو پتہ ہے, جتنی مائیں, جتنی سوشل ورکر, جتنے कितने भी आप जितना सब कोई जमा कर लें, किसी एक की एग्जांपल ना दें, सबको जमा कर लें, तो इनकी जो केयर है, मोहब्बत है, शफकत है, मेहरबानी है, लोगों के दुख सुख में काम आना है, तड़प जाना है किसी के लिए, ये सारी तड़प, ये सारी एहसास, ये सारी केयर, ये सारी मोहब्बत, ये सब तो उसकी रहमान की रहमत के एक हिस्से में से कुछ पोर्शन है। मैंने आपको लास्ट टाइम वो हदीस बता दी थी, उस एक हिस्से का एक पोर्शन है। सोचें वो रहमान कैसा होगा फिर, जिसके पास 99 हिस्से हैं रहमत के। वो जात कसीर और रहमान और रहीम आ जाता है, तो इसमें भी रहम करने का माना है, कोई अलग अलग बात नहीं है, मगर इसमें क्या है, जो बार बार रहम करता है, बार बार रहम करता है। देखिए ना, एक बंदे में कोई सिफत हो सकती है, मसलन है कोई बहुत गनी है, बहुत गनी, बहुत देता है, बहुत देता है, बहुत देता है, लेकिन कोई एक दिन आता है कि वो कहता है कि आज नहीं मैंने देना, ठीक है मैं हूं लेकिन आज मैंने नहीं देना। लेकिन अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला भी है और बार बार रहम करने वाला भी है। ऐसा नहीं कि बस बहुत ज्यादा रहम करने वाला आज तो है लेकिन कल नहीं रहम कर रहा, पिछले गुजरे हुए कल में तो बहुत रहम कर रहा था लेकिन बस आज नहीं कर रहा। जब रहीम आ गया तो कंप्लीट माना हो गया, बहुत ज्यादा और बार बार। इसीलिए जब कहा जाता है ना, वो रहमान दुनिया में और रहीम आखरत में, रहमान दुनिया में यानी काफरों को भी, मोमिनों को भी, सबको दे रहा है बहुत ज्यादा, और रहीम वो आखरत का जो दिन आएगा उसमें रहम करेगा फिर मोमिनों पे। तो रहमान और रहीम दो हमने अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत सिफात पढ़ ली, और इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी को अल्लाह का तारुफ दें तो इस तरह से अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराया करें, अपनी मर्जियों से ना कराया करें, हाँ तुम जहन्नम ही हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हें तो आग में जलोगे, तो पता, ये अल्लाह का तारुफ नहीं है। ये बातें की गई कुरान में, लेकिन वो जहन्नम की बातें बाद में आई हैं। आप देखें यहाँ पे क्या कोई बात है ऐसी, नहीं है। तो जो आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट कैसे आपने करना है वो यहाँ पे बता दिया गया। आगे चलें, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है वो यौमिद्दीन का। अच्छा, पहली बात जो इसका तर्जुमा है, मालिक यौम दिन का, अद्दीन दीन, दीन तो हम समझते हैं मजहब को कहते हैं, मेरा दीन इस्लाम है, तो यहाँ पे बदले के लिए आया। जी हाँ, वो भी माना है, वो भी सही माना है। दीन वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं, निजाम हयात को कहते हैं, लेकिन दीन जजा व सजा को भी कहते हैं, बदले को भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एग्जैक्ट इसके लिए, जो अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाए, डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का भी दिन है, तो दीन वहां पे जजमेंट के लिए भी आता है। वो मालिक है यौमुद्दीन का। अच्छा, अब जब इंसान रहमान और रहीम पढ़ता है ना, तो फिर वो क्या सोचता है, बस फिर तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो मर्जी करो, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है भाई, आप फिक्र की जरूरत नहीं, अब अपनी मर्जियां करो, जैसे चलना है चलो, बस उसे वो तो रहम करना है, उसने इतना उसका रहम है, उसने मेरे पर भी रहम कर देना। जैसे लोग कितने बेपरवाह होके आराम से बोलते हैं नाफरमानियां करके, हाँ अल्लाह गफूर रहीम है ना, तो क्या हुआ, तो फिर इतने बेढब भी ना चलो, ये भी याद रखना वो मालिक है यौमुद्दीन का। इसके अंदर क्या आ गया, अकीदा आखरत। सबसे पहले किसी को कयामत के दिन पे यकीन होगा तो फिर किसी को मालिक मानेगा ना, तो देखें तौहीद भी इसके अंदर आ गई, आखरत पर ईमान भी आ गया, और इन्हीं आयात में रिसालत पर ईमान भी आता है। वो कैसे आता है वो बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप ये सुने, आखरत पर ईमान, आपका आखरत पर ईमान है तो तब आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। और जो लोग कहें कोई आखरत नहीं है, कोई जन्नत जहन्नुम नहीं है, कोई सजा जजा नहीं है, बस जो भी है वो ये दुनिया ही है, तो वो तो यहीं पे उनका तो पत्ता साफ हो गया, आगे क्या चलेंगे, उन मालिक यौमिद्दीन पे ही बैठ रहे। अब यहां पे इसलिए ये लाया गया कि ये बता दिया गया कि जब तुम ये समझ लो कि वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान और रहीम है, तो कहीं ये ना हो कि इस वजह से तुम बिल्कुल अपने आप को शत्रु बेमुहार की तरह आजाद छोड़ दो और अपनी मर्जियां करो। नहीं, एक वो भी दिन है जिस दिन उसने हिसाब लेना है, जिस दिन उसने तुमसे पूछना है, और उस दिन का मालिक वही है। अब ये क्यों कहा गया मालिक अल्लाह ही है उस दिन का? अब भाई आज भी तो मालिक अल्लाह ही है, तो मालिक यौम दीन ही क्यों कहा गया? इसलिए कि दुनिया में तो कहीं ना कहीं हम इस धोखे का शिकार हो जाते हैं कि मैं भी मालिक हूं। जो हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिला हुआ है ना कि मैं नमाज के लिए उठूं या नहीं उठूं, मैं कुरान खोलूं या नहीं खोलूं, मैं क्लास में सो जाऊं या जागी जाऊं, ये मैं इसको समझती हूँ कि मैं मालिक हूँ। पता नहीं अपने आप को हम कितने बड़े मालिक समझ लेते हैं, अपने आप को बा इख्तियार समझ लेते हैं। इसी तरह फिर हम सोचते हैं इस घर की मालिक मैं हूँ, इस गाड़ी की मालिक मैं हूँ, इन 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 चीजों की मालिक मैं हूँ। तो ये तो एक नंबर वन, जो इख्तियार मिला है ना आपको, वो तो टेम्प्ररी अल्लाह के इज़न से ही मिला है, टेम्प्ररी है और अल्लाह के इज़न से। जो आप समझते हैं आप चीजों के मालिक हैं, तो वो हम मालिक नहीं है। अगर हम मालिक होते तो हम कभी दुनिया से खाली हाथ ना जाते, चीजों को साथ लेके जाते, क्योंकि जाहिर हमारी मिल्कियत है, क्यों छोड़ जाते फिर? दूसरे, अगर आप मालिक होते तो आपने किसी से क्यों खरीदी है? तो आपने जब पैदा हुए थे तभी से मालिक होना चाहिए था। आप किसी से खरीदते हैं, किसी से लेते हैं, पहले किसी की होती फिर आप ले लेते हैं, फिर आपसे कोई और ले लेता है, ये तो मालिक ना होना हुआ। और अगर इतने ही मालिक होते तो कयामत के दिन नंगे बदन नंगे पैर क्यों खड़े होते, खाली हाथ क्यों खड़े होते? पैसों की बोरियां साथ लेके आते? चलो पैसों को तो छोड़ो, कम से कम कपड़े तो पहन के आते। ये अल्लाह दिखा देता है कि तुम किसी चीज के भी मालिक नहीं हो, ठीक है? दुनिया में भी मिल्कियत अल्लाह ही की है, लेकिन दुनिया में हमें नजर नहीं आती उस तरह, हमें लगता है हम मालिक हैं। धोखा बस चीज समझ ले, उस तरह से हम देख नहीं पाते, लेकिन कयामत के दिन सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि मालिक अल्लाह ही है, सबका धोखा खुल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई बात कि सब इख्तियार मालिक का मतलब क्या है? मालिक यानी जिसकी मिल्कियत है, जिसका इख्तियार है, सब के इख्तियार खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे जो हमें आज इख्तियार मिले हुए अल्लाह के इज़्ज़त से मिले हुए, अल्लाह ने खुद दिए हैं, वो भी अल्लाह खत्म कर देगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुतकब्बिर, बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं खामोश खड़े होंगे, जो आज आप सदर बादशाह वजीर आजम जिनके आगे रेल पेल देखते हैं सिपाहियों की और पहरेदारों की, सब गायब होंगे। बल्कि दुनिया के बादशाह अपने आप को समझते हैं हम बादशाह हैं, ये क्या बादशाह हैं जिनको अपने वुजरा की जरूरत होती है, ये हर वक्त डर रहता है कोई बगावत ना कर दे। असल बादशाह तो अल्लाह है। अब वो पता है इस मालिक यौमिद्दीन, कई जगह पढ़ा था, कभी आपने नोट किया होगा मलिक यौमिद्दीन भी आता है। कभी आप किसी के पीछे नमाज पढ़े वो कहते हैं मलिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन नहीं कहते, तो आप कहते हैं हाँ इसने तो गलत पढ़ दिया। नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये भी क़िरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मलिक यौमिद्दीन भी साबित है, मालिक यौमिद्दीन भी साबित है। तो कभी आप अगर आप मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ लेंगे तो वो भी ठीक है। मलिक का मतलब क्या होता है? मलिक साहब हम दुनिया में भी लोगों के नाम होते हैं मलिक, तो क्या मतलब होता है? बादशाह, किंग, बादशाह साहब इख्तियार होता है। और मालिक, मालिक का तो आपको माना पता है, ओनर जो होता है, जिसकी मिल्कियत होती है, जिसका हुक्म चलता है, कानून चलता है। तो अल्लाह उस दिन का मालिक है या बादशाह है, दोनों ही माने ठीक है। और क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला उस दिन जो भी फैसला करे, जैसा कुछ भी करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, सब बेख्तियार होंगे। मालिक, मलिक होता ना बादशाह, यानी मलिक यौमिद्दीन बादशाह होगा वो उस दिन का, कोई और बादशाह जो होता है वो साहिब इख्तियार होता है, कोई और साहिब इख्तियार नहीं होगा उस दिन, सबके इख्तियार खत्म हो जाएंगे। इवन यहां तक के आपने वो हदीस सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, वो जो आखिरी बंदा जहन्नुम से निकलेगा जन्नत में जाने के लिए, उसको जन्नत में दाखिल किया जाए, लास्ट वन जो जन्नत में दाखिल होगा, आपको याद होगा, क्योंकि वो लंबी हदीस हम उसमें इस वक्त नहीं जा सकते, आपको याद होगा उस हदीस के अंदर ये है कि उसका रुख जहन्नुम की तरफ होगा, जन्नत उसकी पीछे होगी, तो वो दुआ करेगा अल्लाह मेरा रुख जहन्नुम से फेर दे। इससे क्या पता चला, इतना भी इख्तियार नहीं। देखिए हमें दुनिया में इख्तियार है ना, मैं आप कंप्यूटर की तरफ देखूं या मेज की तरफ देखूं या बाहर देखना शुरू कर दूं, हमारा इख्तियार यहाँ पे अल्लाह ने दिया हुआ ना, इतना भी नहीं उसको इख्तियार होगा कि वो अपना रुख फेर ले जहन्नुम से और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए। इतना भी उसको इख्तियार नहीं होगा, कहेगा मुझे अल्लाह जन्नत के करीब कर दे, उसको ये नहीं इख्तियार होगा, चल के चला जाए, जाके खुद ही खड़ा हो जाए, इसमें क्या मुश्किल बात है। फिर उसके बाद उसमें हदीस में आता है कि आगे वो कितनी देर दुआ मांगता रहेगा, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, हाँ तो क्या वो खुद ही नहीं जा सकता। तो इससे पता चलता है कोई इख्तियार नहीं, नो अथॉरिटी नो पावर। उस दिन सब पावर लेस हो जाएंगे, सिर्फ पावर उस दिन अल्लाह के पास है, ओनली सोली अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने तीसरे बारे में फरमाया ना कि ममा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम ममा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या पता वो यौमुद्दीन क्या है। यौम अल्लाह तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल मुल्कु यौम इज़िन लिल्लाह, जिस दिन कोई नफ्स किसी चीज का मालिक नहीं होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा किसी को, बादशाहत अल्लाह के लिए होगी उस दिन। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दिन जो जजा और सजा का है, उस दिन इख्तियार अल्लाह का, फैसला अल्लाह का, जजमेंट उसकी, और बाकी सब बे इख्तियार। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला उस दिन ये फरमाएगा, अनल मलिकु अन दयान, मैं बादशाह हूं और मैं अदयान हूं। दयान इसी से है, ये दीन से। दयान का मतलब क्या, यानी बदला देने वाला, मैं हूं अदयान, कोई और नहीं अथॉरिटी रखता होगा बदला देने की किसी को, ना सजा की ना जजा की, और ना ही कोई इख्तियार रखता होगा किसी भी किस्म का। ये जो इंसान सोचता है मेरा ये मेरा वो, मैं बड़ा बा इख्तियार, मेरे इतने ताल्लुका, ये सब धोखे खुल जाने, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन सिर्फ अल्लाह की जात है। तो अब हमने क्या करना है, इस आयत को पढ़ के इसका मतलब हमने समझ लिया ना कि एक बदले का दिन है, उसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि वो जजा और सजा का दिन कब कायम होगा, यानी कयामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उससे सवाल किया, फरमाया तुमने इसकी तैयारी क्या की है। हम पीछे पड़े रहते हैं किस चीज के, उसकी निशानी पूरी हुई कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अच्छा ऐसे हुआ कि नहीं, अभी तो ईसा अलैहि सलाम, भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, अगर हम भी नबी अलैहि सल्लतु वसलाम के जमाने में होते और ये पूछते कि क़यामत कब आनी है, तो वो हमें भी यही कहते कि तुमने क्या तैयारी की है। तो बात क्या है असल तैयारी करने की, इसके पीछे ना पड़े वो कब आएगी, ये देखें मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं, मुझे खड़े होना अल्लाह के सामने। तो इस आयत को पढ़ने का फायदा यही है कि फिर हम उस दिन को अपने जहन के अंदर लेकर आए कि जब मैं अल्लाह के, जब आप नमाज में खड़ी हुई मालिक यौमिद्दीन पढ़ रही है, तो सोचें कि मैं ऐसे ही अल्लाह के सामने खड़ी होंगी और उस दिन का मालिक वो होगा, उस दिन का बादशाह वो होगा, फिर मेरी क्या तैयारी है। जो ये कहता है मैं मानती हूं, मैं मानती हूं कि हाँ वो कयामत का दिन है, लेकिन उसकी कोई तैयारी नजर नहीं आती, उसकी कोई सोच ही नहीं है, तो इसका मतलब है यकीन नहीं है इस दिन का। अगर यकीन होता तो तैयारी ना करते, भला छोटी सी बात का यकीन हो, अगर हमें अभी यकीन हो कि बाहर कोई, अल्लाह माफ करे, कोई तूफान आना है, तो हम फौरन अपनी चीजें संभालेंगे जो बाहर पड़ी हुई, चीजें उड़ ना जाएं, कपड़े उतार के ले आते हैं, ये यकीन होता है, जबकि हाँ भाई ऐसे कोई मौसम के हालात हो रहे हैं। और इतने बड़े दिन का जिसको यकीन हो, हैरत है कि अगर वो ये कह के मुझे तैयारी की जरूरत ही नहीं और आराम से बैठा रहे, इसका मतलब उसको यकीन नहीं। और वो यौम है, हम तो यौम समझते हैं किसको, ये 24 आवर को, दिन का हमने क्या समझा, जब से या सूरज निकला उससे लेकर रात तक ये एक दिन है, वो ये दिन नहीं है, वो यौम कैसा है, वो 24 आवर का नहीं है, या 12 घंटे का सूरज निकलने से रात तक का नहीं है, वो कितना लंबा होगा ये उस पर डिपेंड करता है जितना एक इंसान का ईमान होगा। जिसका ईमान खालिस है और बहुत मजबूत है, जबरदस्त ईमान के साथ गया है, اس کے لیے صرف اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت, یا حدیث میں آتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت. اور جس کی تیاری نہیں ہے اس کے لیے جتنی تیاری کم ہوگی اتنا ہی لمبا ہوگا, جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی لمبا ہوگا. جس کی بالکل ہی کوئی تیاری نہیں تھی, جس نے بالکل اس دن کا سوچا نہیں تھا, اس کے لیے تو 50,000 سال کے برابر ہوگا. آپ دیکھیں نا, ایک ہی رات ہوتی ہے, کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہاں یہ پتا بھی نہیں چلا کب سوئی اور کب رات بھی گزر گئی, حالانکہ 12 گھنٹے سوئے ہوتے. اور دوسرا کیا کہتا ہے, یہ رات نہیں تھی, یہ تو پہاڑ کے برابر تھی میرے لیے, میں جو تکلیف میں ہوتا اس کے لیے تو ایسے ہی ہوتی, وہ ساری رات کراہتا رہتا اس کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں, وہ ٹائم ہی دیکھتا رہتا رات گزرتی ہی نہیں, اور ایک جو سویا ہوا اس کے لیے کیسے مزے سے گزر گئے. تو وہ دن بھی ایسا ہے, ظاہر ہے جس نے اب آنکھ کھولی جب اس نے یہ دن دیکھا تب اس کو ہوش آیا, وہ اس سے پہلے بے ہوش ہی پڑا ہوا تھا, دنیا گزار کے آ گیا, ہوش اس کو اب آیا, اس کے لیے تو یہ دن بہت لمبا ہے. اور جو دنیا میں ہوش میں رہا اور اپنے لیے تیاری کی, اس کے لیے انشاءاللہ وہ دن ایسے ہی ہے یا عصر سے مغرب تک کا وقت. اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں رسالت کیسے آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا توحید بھی اس میں آ گئی, آخرت بھی آ گئی. آخری بات آپ کو بتاتے ہیں رسالت کیسے آئی. جب آیا الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اور اس کی رحمت, جو اس کی رحمت اتنی ہے بندے پہ, وہ یہ نہیں صرف اس کی رحمت کے بندے کو کھلاتا پلاتا بس یہ رحمت ہو گئی, اس کی رحمت یہ ہے, یہ بھی ہے اس کی رحمت کہ وہ اپنی مخلوق کو, اپنے بندوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا, وہ کھلاتا پلاتا تو ہے لیکن بندے کی ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے. یہ اس کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے کہ اس نے ہدایت پہنچانے کے لیے رسول بھیجے تاکہ انسانیت بھٹکے نہیں, جہنم میں نہ چلی جائے. ایسے ہی ہے جیسے کئی ماں باپ صرف بچوں کے لیے کیا فکر کرتے ہیں کہ ان کو برانڈ نیم یہ پہن لیں, ان کو بڑے سے بڑے اچھے اسکول میں داخل کر لیں, ان کو اچھی سے اچھی غذا کھلا دیں, بس یہ ان کا شوق ہوتا ہے, سیروں پہ چلے جائیں. لیکن جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کی آخرت کی فکر پہلے کرتے ہیں, ہمارے بچے صحیح, اپنی آخرت ان کی سمر جائے, وہاں جا کے ان کو کوئی عذاب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی, تو اس کا مطلب رحمت سے آپ سمجھتے ہیں نا, اصل رحمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دنیا میں رزق بھی دیتا ہے, سسٹین بھی کرتا ہے, لیکن ایک رحمت جو اس کی بہت بڑی ہے, جو سب سے بڑی رحمت ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ الرحمن علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا, تو اس کی رحمت کے ایک بہت بڑا ظہور مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اس نے ہدایت کا انتظام کیا انسان کے لیے, اور ہدایت کسی کے ذریعے آئی نا تو رسول کے ذریعے آئی, تو رسولوں کا بھیجنا اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی. تو آپ نے ان تین آیات میں کیا پڑھ لیا, توحید, رسالت, ایمان بالآخرہ. سبحان اللہ, کوئی اور کلام واقعی اس کا میچ نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے تین آیات میں تین بیسک جو ہمارے عقائد ہیں ان کو ان تین آیات میں کور کر لیا. جو یہ تین آیات پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان ان تینوں پہ ہے, اور جو ان تین آیات کو ہی نہ سمجھ پایا انہیں بہت بڑا خزانہ کھو دیا.